आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। लक्ष्मीदासन आज मन के सभी द्वार खोल देगी, एक लक्ष्य द्वार।
बालदेव जी,
जी
रामदास फिर बौर आ गया है। कल भंडारी से कह रहा था लक्ष्मी से कहो एक दासी रखने की आज्ञा दे।
कहिए तो भला।
बालदेव जी क्या जवाब दें, दासी रखना धर्म के खिलाफ है ये उनको नहीं मालूम। 2-3 महीने ही हुए उन्होंने कंठी ली है, मटके नियम धर्म नेम टेम के बारे में वे क्या कह सकते हैं। लेकिन महंत सेवादास ने भी तो,
लक्ष्मी कहती है
आप उसे समझाइए बालदेव जी, वो बौरा गया है, आजकल तत्मा टोली में आना जाना शुरू कर दिया है। भगवान भगत ने कल हिसाब किया है, रामप्रिया की माँ को 4 सेर चावल दिलवा दिया है रामदास ने। मैंने पूछा तो बोला मटका पुराना नौकरान है, भूख से मरेंगे वे लोग। जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बांचने वाला दूध मलाई खाता है तो,
लक्ष्मी कहते कहते रुक जाती है।
बालदेव जी आजकल कुछ मति सुन्न हो गए हैं, सीधी बात भी समझ में नहीं आती, कुछ नहीं समझते हैं, कितने सीधे सूधे हैं। आपका मठ पर रहना उसको पसंद नहीं।
लक्ष्मी बालदेव क्यों देखती है। तो हम चले जाते हैं, यदि हमारे रहने से मठ का नियम भंग होता है तो हम चले जाते हैं।
कहाँ जाइएगा।
चंदनपट्टी। लक्ष्मी का कलेजा धड़क उठता है। इधर कई दिनों से बालदेव जी बहुत उदास हैं, खाना पीना भी बहुत कम हो गया है, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते, आसन पर पड़े बीजक पाठ करते रहते हैं।
तहसीलदार साहब कह गए हैं बालदेव जी की गवाही पर ही मुकदमे की सारी बात है।
बालदेव जी सुनकर बोले गवाही के लिए हम कटघरा में नहीं चढ़ सकते, महात्मा जी कहीं न झगड़ू न जाहू कचहरिया बेमनवा के ठाठ जहां। आज मठ सोना है, आज ही लक्ष्मी सब कुछ कह देगी बालदेव जी से।
आप चंदनपट्टी चले जाइएगा और मैं।
आप।
लक्ष्मी बालदेव जी की आंखों में आंखें डालकर कहती है।
लक्ष्मी जब जब इस तरह देखती है बालदेव जी न जाने कहां खो जाते हैं, एक मनोहर सुगंध हवा में फैल जाती है, पवित्र सुगंध,
बीजक से जैसे सुगंध निकलती है। हाँ मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, महंत की दासी बनकर ही मैं मठ पर रह सकती हूँ।
लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं।
नहीं लक्ष्मी, तुम रामदास की दासी नहीं, मैं तुम आप बालदेव जी।
लक्ष्मी पागल की तरह बालदेव जी से लिपट जाती है।
रक्षा करो बालदेव जी, तुम कह दो एक बार तुम्हें रामदास की दासी नहीं बनने दूंगा। तुम बोलो चंदनपट्टी नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ बालदेव, दुहाई।
लक्ष्मी। बालदेव जी लक्ष्मी को संभालते हुए कहते हैं कोई देख लेगा। लक्ष्मी बालदेव जी के गले से हाथ छुड़ाकर अलग बैठ जाती है, सिर नीचा करके सिसकती है। बालदेव जी की सारी देह झनझन कर रही है, कनपट्टे के पास लगता है तपाए हुए नमक की पोटली है। एक बार आश्रम में उनके कान में दर्द हुआ था, गांगुली जी ने नमक की पोटली से सेक निकले कहा था। कलेजा धड़धड़ कर रहा है। लक्ष्मी की बांह ठीक बालदेव की नाक से सट गई थी। लक्ष्मी के रोम रोम से पवित्र सुगंधी निकलती है, चंदन की तरह मनोहर शीतल गंध निकल रही है। बालदेव का मन इस सुगंध में हेल डूब कर रहा है, वो लक्ष्मी को छोड़कर चंदनपट्टी में कैसे रह सकेगा। रूपमती माए जी लक्ष्मी,
महात्मा जी के पंथ को मत छोड़िए बालदेव जी, महात्मा जी अवतारी पुरुष हैं, आजकल उदास क्यों रहते हैं। महात्मा जी पर भरोसा रखिए, जिस नैन से महात्मा जी की दर्शन किया है उसमें पाप को मत पैसने दीजिए, जिस कान से महात्मा जी के उपदेश को सरवन किया है उसमें माया की मीठी बोली को मत जाने दीजिए, महात्मा जी सदगुरु के भगत हैं।
लक्ष्मी आंखें मूंद कर ध्यान की आसनी पर बैठ गई है, सफेद मलमल के साड़ी पर बिखरे हुए लंबे लंबे काले बाल और गोरा मुखमंडल।
ध्यान आसन पर इस तरह बैठकर उपदेश देने वाली ये लक्ष्मी कोई और है।
बालदेव जी के हाथ स्वयं ही जुड़ जाते हैं, लक्ष्मी की पवित्र आत्मा की वाणी फिर मुखरती होती है।
दुनिया के दुख गुण को देखने के पहले अपने काया की ओर निहारो, मन मैला तन सूथरो उल्टी जग की रीत, पहले मन को साफ करो। मन पवित्र नहीं इसलिए वह दुखी होता है, निराश होता है। तुम पंथ पर उदास होकर क्यों बैठ रहे हो, डरते क्यों हो। चलते चलते पगु थका नहर रहा नाव कोस, बीचही में डेरा परा कह कौन का दो।
बालदेव को लगता है खुद भारत माता बोल रही है, यही रूप है, ठीक यही रूप है जिसके पैर खून से लथपथ हैं, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, बावन दास कहता था, भारत माता जार बेजार हो रही है। नहीं, माँ रो नहीं रही, अब पंथ बता रही है, उचित पंथ पर अनुचित काम करने वालों को चेता रही है। बावन दास भरम गया है और खुद बालदेव महात्मा जी के पंथ पर निराश और उदास होकर चल रहा है।
भारत माता की जय, महात्मा जी की जय, भारत माता, भारत माता।
महंत रामदास बहुत देर से कनेल गाछ की आड़ में खड़े होकर देख सुन रहे थे। ध्यान आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी उपदेश दे रही है और बालदेव जी हाथ जोड़े एकटक से लक्ष्मी को देख रहे हैं। अचानक बालदेव जी लक्ष्मी के चरण पकड़कर हल्ला करने लगे,
भारत माता की जय।
भंडारी, भंडारी!
महंत रामदास पिछवाड़े की ओर भागते हुए चिल्लाते हैं,
भंडारी, बालदेव पागल हो गया है, दौड़ो।
मठ पर तुरंत भीड़ लग गई। डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब, कालीचरण और खिलावन सिंह यादव भी आए हैं। बालदेव की बूढ़ी मौसी बीच बीच में गा गा कर रोने रोने की सुरखुर करती है, किंतु एक ही साथ इतने लोग डांट देते हैं कि वह चुप हो जाती है और बारी बारी से सबके मुंह की ओर देखती है। कुछ देर के बाद ही वो फिर शुरू करती है,
बाबू रे, है बूढ़ी, ठहर, चुप।
डॉक्टर साहब बालदेव के बाह में रबड़ की पट्टी बांधकर मुट्ठी से एक छोटे से गेंद को दबाते हैं।
ओ, इसी मशीन से तो तहसीलदार की बेटी कमला की भी जांच होती है। ओ,
बालदेव जी रह रहकर बाहें ऐंठकर हाथ छुड़ाकर उठ खड़े होते हैं।
आप लोग क्या समझते हैं, मैं पागल हो गया हूँ? कभी नहीं, हरगिज नहीं। हमको पागल कहते हैं, इस गांव में क्या था, कोई जानता भी था इस गांव का नाम? इसको हॉल इंडिया में मशहूर कौन किया? हमको छोड़ दीजिए, हम महात्मा जी के पंथ से नहीं हट सकते।
भीड़ में कोई कहता है,
मठ पर रहने से गांजा पीने की आदत हो जाती है।
कौन कहता है हम गांजा पीते हैं?
दारू गांजा भांग की दुकान में पिकेटिन किया है हम, और हम गांजा पियेंगे? छी छी, हम महात्मा जी के पंथ को कभी नहीं छोड़ सकते, साक्षी है महात्मा जी।
बालदेव की बुढ़िया मौसी अब नहीं मानती, वो गा गा कर रोती है,
डॉक्टर ने तहसीलदार की बेटी कमला की बीमारी को उतार कर बालदेव पर चढ़ा दिया है, ये भले आदमी का काम नहीं, तहसीलदार की बेटी अभी तक कुमारी है। हे भगवान, अब बालदेव का ब्याह नहीं होगा, दैबा रे दैबा।
बालदेव जी, लक्ष्मी कहती है, चित्त को शांत कीजिए। ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी दासन साहेब बंदगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम पर कभी कभी महात्मा जी का भर होता है, चुन्नी गोसाई को तो रोज भोर का होता है।
बालदेव जी चुपचाप बैठ जाते हैं।
डॉक्टर साहब, बालदेव जी इधर कई दिनों से बहुत उदास रहा करते थे, रात में नींद पता नहीं आती थी या नहीं। एक सप्ताह पहले एक दिन बुखार लगा था, बुखार की पीली गोली एक साथ सात ठोका गए थे।
पीली गोली सातों एक ही बार? डॉक्टर आश्चर्य से पूछता है।
जी, बुखार की पीली गोली बांटने के लिए मिली थी ना, उसी में से सात ठो एक ही बार खा गए। बोले कि रोज कौन खाए, एक ही साथ सात दिनों की खुराक ले लेते हैं।
डॉक्टर ठटाकर हंस पड़ता है।
कितना बढ़िया हिसाब है। बालदेव जी, दस दिनों तक घोल का शरबत पीजिए, ठीक हो जाएगा।
कुछ नहीं है, दवा की गर्मी ही है।
रामकृपाल सिंह कहते हैं,
बिधाना अनार संतोला का रस तो ठंडा होता है, गर्मी को शांति करेगा। जेहल में हम सिर्फ बिधाना संतोला खाकर रहते थे, दो बिधाना मेरे पास अभी भी हैं।
बालदेव और कालीचरण के बयान पर ही सब कुछ है, जिसको चाहे फंसा दे चाहे बचा दे। खुद दरोगा साहब कहते थे कि बालदेव की गवाही की बहुत कीमत है। खिलावन सिंह यादव आजकल कालीचरण का आग पीछा खप करते हैं, पार्टी ऑफिस के बगल में एक चौकड़ा घर बनवा देंगे, सुनते हैं साथी निवास घर जैसा घर जिला पार्टी ऑफिस में है, मीटिंग के दिन जितने साथी आते हैं उसी घर में रहते हैं, जो सेक्रेटरी होगा वो ऑफिस घर में रहेगा। कालीचरण ने खिलावन सिंह से कहा तो वे तुरंत तैयार हो गए। ज्योत की काका ने कालीचरण का हाथ देखा है,
खूब नक्षत्र बल्ली है कालीचरण, राज्यसभा में जश है, बेटा बेटी भी है, धन भी है, मगर एक घर बड़ा जब्बड़ है।
सिंह जी बालदेव जी को बिधाना संतोला खाने के लिए मना रहे हैं।
खा लो बालदेव जी, बड़ा पुष्टिकारी चीज है, दवा की गर्मी दूर हो जाएगी।
गवाही ने बालदेव जी की कोई हुई कीमत को फिर बहुत तेजदार कर दिया है। बालदेव जी कहते हैं,
महात्मा जी का रास्ता हम कभी नहीं छोड़ सकते, झगड़ न जाहो कचहरिया, दलालवा के ठाट जहां।
लेकिन बालदेव जी को तो कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये दस्तखत आपका ही है। ये कहेंगे कि हाँ बस, और कुछ कहना ही नहीं है। दस्तखत तो बालदेव जी ने किया था, ये तो झूठ बात नहीं। कालीचरण ने भी किया था।
जैसे भी हो, बालदेव जी को गवाही के लिए राजी करना ही होगा, नहीं तो सारे गांव पर आफत है।
कोठारी लक्ष्मीदासिन को तहसीलदार साहब समझा कर कह दें तो बात बैठ जाएगी।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।